हरे हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी के दिन नित्य भागवत श्रवण वाले करने वाले दामोदर देश के भक्तों को प्रणाम और उन सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो दसम स्कंद है, भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है, और इसके पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के प्रकट्य के विषय में जो भूमिका है उसका हम श्रवण कर रहे हैं। अध्याय शुरू होता है परीक्षित महाराज की जिज्ञासा से। वो भगवान श्री कृष्ण के विषय में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ वो कहते हैं मेरा संबंध है, उसी माँ के उधर उत्तरा के उधर में भगवान आए थे जिसमें मैं था, इसलिए मेरा सहोदर है। संस्कृत में सहोदर का मतलब होता है भाई, जो एक ही उदर में आए, पेट में आए, और हमारे सारे पूर्वजों की रक्षा की थी, इसलिए मैं उनके विषय में विस्तार से सुनना चाहता हूं। और बलराम जी को आपने एक समय में दो माताओं का बेटा एक ही जन्म में कैसे बता दिया कि वो देवकी का भी सातवां पुत्र है और रोहिणी का भी पुत्र है, और भगवान श्री कृष्ण आखिर मथुरा छोड़ के गोकुल छोड़ के मथुरा क्यों गए, गोकुल को छोड़ के मथुरा क्यों गए, उनकी वृंदावन लीला बताइए, उनकी मथुरा की लीला बताइए, द्वारका की लीला बताइए। और ये प्रश्न पूछते हैं कि आप जैसा प्रश्न पूछने वाला मिल जाए तो कितना सौभाग्य है। निवृत्त त्रिशय उपगीय मानाय भवोषधि श्रोत मनोभिरामा, ऐसी भव रोग की औषधि हरि कथा आप जैसे निवृत्त त्रिशयी महात्मा के मुख से सुनने को मिल जाए तो कौन नहीं सुनेगा। और यहाँ कहा है कि भाई मुनि सताम, और फिर सुखदेव महाराज कहते हैं राज ऋषि सताम, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। वासुदेव प्रश्न पुनातीत्रियम श्रोत्रम वक्तारम पृच्छतम, भगवान कृष्ण के विषय में प्रश्न पूछा जाए, पूछने वाला बताने वाला सुनने वाला सब पवित्र होता है, होते हैं, जैसे गंगा तीनों लोगों को पवित्र करती है। और फिर सुखदेव महाराज बिना किसी भूमिका के सीधा ही शुरू कर दिया कि पृथ्वी का भार आतिताई राजाओं से बढ़ गया और पृथ्वी ब्रह्मा जी को लेकर और अन्य देवताओं को लेकर क्षीर सागर पे भगवान के अवतार के लिए प्रार्थना करने के लिए गए, लेकिन भगवान का दर्शन ब्रह्मा आदि देवताओं को भी नहीं हुआ। केवल ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने प्रेरणा दी कि मैं पृथ्वी के संकट से परिचित हूं, क्योंकि पृथ्वी भगवान की पत्नी है, ये पृथ्वी भूमि देवी भगवान की पत्नी है, अचला भगवान की पत्नी है, तो पति कैसे पत्नी के दुख को नहीं जानता है, भूदेवी। और भगवान ने कहा मैं तो आऊंगा, आप सब देवता भी यदुवंश में श्री के प्रिय करने के लिए, मैं अकेला नहीं आऊंगा, श्री के साथ आऊंगा, राधा रानी के साथ आऊंगा, और आप भी अपनी स्त्रियों के साथ यदुवंश में, मधुवंश में, वृषणी वंश में, भोज आदि वंशों में प्रकट होकर और मेरी लीला में सेवा और सहायता करना। और ये भूमिका बताने के बाद एकदम सुखदेव महाराज कहते हैं महाराज उग्रसेन, महाराज सूरसेन का राज, आपको एक बार पहले कथा में बताया सूरसेन महाराज और पर्जन्य महाराज, ये दोनों देवमिहिर के पुत्र हैं। सूरसेन महाराज से आगे चल के इनकी राजधानी मथुरा और सोरीपुर आगरा के पास, थोड़ा आगरा से आगे जमुना के किनारे आज भी एक बटेश्वर सोरीपुर के नाम से नगर है। तो सोरीपुर और मथुरा ये राजधानी सूरसेन महाराज की हुई, और पर्जन्य महाराज गोकुल और ब्रज के राजा बने। तो सूरसेन के घर में वसुदेव आदि का पुत्रों का जन्म हुआ, और पर्जन्य के घर में नंद बीच का बेटा, बड़े उपनंद सुनंद आदि और नीचे नंदन आदि पांच बच्चों का जन्म हुआ। तो इनका पिता एक है, केवल माता का अंतर है, एक वैश्य माता से पर्जन्य हुआ और क्षत्रिय माता से जो है वो सूरसेन हुआ, ये देवमीर महाराज के। तो सूरसेन महाराज का राज मथुरा में था, और उनके भाई देवक की बेटी देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ तय पाया। तो उस वक्त में राजा मथुरा का महाराज उग्रसेन था और देवक उसका भाई था। उग्रसेन महाराज के घर में काल नेमी नाम का असुर कंस पुत्र के रूप में पैदा हुआ था, जो असल में उनका पुत्र नहीं था, काल नेमी असुर था, जो पद्मावती और उग्रसेन के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ था। तो देवकी के विवाह मंगल कार्य में विदाई के समय कंस भाई के रूप में अपनी बहन को विदा करने के लिए जाने को तैयार हुआ। अनशिला प्रभुपाद लिखते हैं, ये परंपरा वैदिक होती थी कि बहन अब नए घर में जा रही है तो उसके साथ उसका भाई परिचित एक व्यक्ति जरूर साथ जाना चाहिए, और कुछ दिन वहां रहने के बाद वो भाई बहन को वापस घर में लाया करता था, फिर अपने आप पति आके पत्नी को ले जाता था। ये वैदिक सिस्टम अभी भी कहीं ना कहीं हमारे पास तो ये ऐसे प्रचलित आज भी है। तो जब विदाई का समय हुआ तो आज का श्लोक जो हमारा है 31 और 32, इन श्लोकों में जो वैदिक काल में जो संस्कृति थी उसका वर्णन किया गया है। तो आइए श्लोक का पाठ करते हैं। चतुःशतं परिब्रह्म गजानां हेममालिनां अश्वानां अयुतं सारथं असारधं रथानां च त्रिषट्शतं दासीनः पढ़ेंगे साथ तो शुरू करें। चतुःशतं परिब्रह्म गजानाम हेम मालिनाम अश्वानाम अयुतम सार्धम रथानाम चत्रिशतम दासीनाम सुमकुमारीनाम देवशते सम अलंकृते द्वेत्रे देवक प्रादात याने द्वित्री वत्सला द्वित्री वत्सला। द्वित्री संस्कृत में बेटी को कहते हैं, जो अंग्रेजी में डॉटर हो गया, और द्वित्र का वैसे मालूम माना है दोहने वाली, उसका अर्थ है गाय से दूध निकालने वाली, जो दोहन का काम करते हैं उसको कहते हैं दोहित्र, और दोहित्री का मतलब बेटी जो डॉटर हो गई आगे चल के। तो अपनी डॉटर के लिए वत्सल, वत्सल जो शब्द है ये बहुत स्नेह का वाचक है, भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। और पिता जो है अपनी पुत्री को का वत्सल है, दोहित्र वत्सल, जैसे भक्त वत्सल ऐसे दोहित्र वत्सल। और शब्द वत्सला कहां से निकला है? वत्सला कहीं कहा जाता है गाय को, जो अपने नए जन्म देने वाले बच्चे को, भले वो मल मूत्र में सना हुआ है, गोबर में, मूत्र में, रत में सना हुआ है, उसको अपने मुख से चाट कर, जब तक वो खड़ा होके दूध नहीं पीता है तब तक उसको चाटती रहती है, कितनी पीड़ा से जन्म देते ही एकदम उठ के उसको चाटना शुरू करती है। एक तो ये वत्सला का अर्थ है कि जिससे वो प्रेम करती है उसके सारे अवगुण धो के साफ करती है, और दूसरा वत्सला की परिभाषा है जहां छोटे गाय के बछड़े को ले जाएंगे वहां उसके पीछे पीछे गाय जाएगी, जहां जहां भक्त जाएगा वहां भगवान जाएगा। तो भक्त वत्सल भगवान का यह है कि भक्त भगवान अपने भक्तों के सारे अवगुण दोष धो के साफ करते हैं, और विशेष रूप से भागवत श्रवण करने वाले भाग्यशालों के लिए तो लिखा है प्रवेश करण रंध्राणाम स्वानाम सरोरोहम धुनोति समलम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय के सारे अवगुण धो के साफ कर देते हैं, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। और जहां भक्त जाता है वहां भगवान उसके पीछे जाते हैं। प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए तो कितने विग्रह उनके पीछे भागते हुए चले गए, जैसे एक साक्षी गोपाल गया था केवल एक ब्राह्मण की वो साक्षी देने के लिए वृंदावन से, लेकिन यहां तो कितने विग्रह प्रभुपाद के पीछे पाश्चात्य देशों में लोगों का कल्याण करने के लिए चले गए। तो ये भक्त वत्सल का वर्णन है भगवान का। यहाँ दोहित्र वत्सल अपनी बेटी से इतना स्नेह करते थे कि बेटी को दोहित्र को पिता का नाम है देवक ने प्रदात दिया। कब दिया? याने। ये याने शब्द भी जैसे संस्कृत में वायुयान कहते हैं, वायुयान मतलब हवाई जहाज, तो इसका मतलब जब उनको विदाई के समय वो मुसाफरी में जा रहे थे यात्रा के लिए, उनकी विदाई हो रही थी अपने पति के घर में जब बेटी जा रही थी, उस समय उन्होंने अपनी स्नेह पात्र पुत्री को देवक महाराज ने ये विदाई के समय यात्रा के समय दिया। क्या दिया? तो ऊपर से शुरू करते हैं, चतुर्शतम। चतुर्शतम, चतु का मतलब चार और शतम का मतलब होता है 400, सत्य सौ कहते हैं। अजय सत्य शब्द बहुत प्रसिद्ध है, सत्य कृतु इंद्र को कहते हैं सत्य कृतु, सत्य का मतलब सौ, कृतु का मतलब वैदिक यज्ञ करने वाला, जो सौ यज्ञ करता है वो इंद्र के पद का अधिकारी होता है। तो सत का मतलब सौ, सत कोटि तो सौ करोड़, तो यहां ये सत चतुर्शत 400 क्या दिया, 400 नीचे लिखा है, 400 क्या दिया, गजानाम 400 हाथी दिए। कैसे हाथी दिए? हेम मालिनाम, जिनके गले में सोने की मालाएं लटक रही थी, ऊपर बहुत अच्छा बैठने के लिए होदी बनी हुई थी, और हाथी को सुसर्जित करके और आभूषणों से दिया। क्यों दिए? पारिब्रह्म। ये पारिब्रह्म शब्द जो है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, पारिब्रह्म का शब्द है जहेज में दिए, जहेज में दिए, डाउरी में दिए। पारिब्रह्म का मतलब है विशेष रूप से कन्या के समय, कन्या दान करते समय उसका पिता, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं जैसे जैसे बेटों का संपत्ति में भाग होता है, चल अचल संपत्ति में बेटों का तो भाग होता है, हिस्सा होता है, उसका पोर्शन होता है, लेकिन बेटी का पोर्शन नहीं होता है। इसलिए बेटी को जब शादी होती है तो उस समय उसके घर गृहस्थी के लिए आवश्यक सब सामान, जैसा उसका वर्ण आश्रम है, जैसे हाँ जी हाँ जी,
आज का श्लोक 33 और 34 है, लेकिन आप इतनी अच्छी तरह समझा रहे थे मैंने आपको रोका नहीं।
ओ मेरे, मैं इसको 31 30, चलो उस तक पहुंच जाएंगे, उस तक पहुंच जाएंगे,
वही ठीक है ठीक
है, चलो पहुंचते हैं उस तक, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मेरे दिमाग में यही आ गया, कोई बात नहीं, तो हम इसको जल्दी में पूरा कर देते हैं। तो ये बेटी को उसकी अपने अपने वर्ण के अनुसार और अपने अपने जो उसकी योग्यता है उसके अनुसार ऐसे देते। तो क्या दिया? अश्वानाम अयुतम 1000 अश्व घोड़े दिए, सारधम रथानाम च और रथ दिए, और त्रिशतम 3, 3 और 6 और 100, तो ये 3, 6 और 100 ये क्या दिया? ये दिया दासी नाम सुमको ये दिए उनको घोड़े और रथ, और रथ दिए 18,000 3 बार 6, 600, और दासी नाम उनको देव दासियां दी सुकुमारी जो कुमारियां थी, और अलंकृत उनको वस्त्र आभूषण से साथ दिया, और ये अपनी बेटी को ऐसे दिया। इसका तात्पर्य आपने पढ़ा है, हम आगे चढ़ते हैं ये वर्णाश्रम व्यवस्था में। तो 33 पढ़ो ना, 33
33 मेरे सामने स्क्रीन पे है,
हाँ 33 पढ़ते हैं। शंख तूर्या मृदंगाश्च ने दुर्दुंदभ्यः समम् प्रियाण प्रक्रमे तात वर वधो सुमंगलम्। वर और वधु, वर कहते हैं पति को और वधु कहते हैं पत्नी को। वर इसलिए इसको कहते हैं कि उसको वरण किया जाता है, वरण करने का मतलब वर माला पहनाते हैं, वरण करते हैं, जैसे हमारे लिए गायत्री मंत्र में कहा है वरेणियम, जैसे एक जीव को भगवान को वरण करना चाहिए क्योंकि वो हमारा पति है, ऐसे वधु का मतलब है जो, जैसे गोपियों के लिए शब्द कृष्ण वधवा, वधु और वर ये पति और पत्नी के लिए शब्द हैं। वर वधु सुमंगलम, सुमंगलम का मतलब विवाह के समय, प्रायः विवाह को मंगल मंगल ही कहते हैं, मंगलम कहते हैं। तो विवाह के समय, विवाह के समय, विदाई के समय वर और वधु के लिए क्या किया गया, शंख शंख बजाए गए, तूर्य और तूरी बजाई गई, मृदंग बजाए गए ने, और इनका घोष होने लगा, ने दोहो दुम दुबी, और दुमदुबियां बजने लगी। समम, समम का मतलब ये सारे ताल से, एक दूसरे से के साथ तालमेल से बहुत मधुर आवाज में ये बजने लगे। और प्रयाण प्रकरमे, प्राण प्रयाण 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 का मतलब जब विदाई का समय, ये प्रायण, यहां प्रयाण मंगल प्रायण है, ये मंगल प्रायण है। और एक संसार से जीव के जाने का, उसको भी प्रायण कहते हैं, जब ये संसार से जाता है वो शोक प्रायण होता है, ये मंगल प्रायण है। तो प्रायण प्रक्रमे, वो जब ये समय आया विदाई का, उस समय ऐसे सुंदर वाद्यों का नाद बहुत ही मधुर सुर में होने लगा। तात, ये संबोधन कर रहे हैं सुखदेव महाराज परीक्षित को, हे मेरे प्रिय परीक्षित, जैसे शिष्य को पुत्र को संबोधन तात से किया जाता है, हे तात वर वधु सुमंगलम, वर वधु के मंगल के लिए ऐसे बाजे बजाने बजने लगे, बड़े शुभ अवसर का सूचक। अब हम 34वें श्लोक का पाठ करते हैं। पथि प्रग्रहीणं कंसं आभास्याः शरीरवाक अस्यास्त्वाम् अष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे अबुद्ध। अबुद्ध कंस के लिए शब्द लिखा है, मूर्ख, अबुद्ध, तुम बुद्धिमान नहीं है, तुम पूरा मूर्ख है। हे अबुद्ध, किसको कहा अबुद्ध, कंस को, कंस क्या कर रहा था कंस, जब ये अबुद्ध, किसने कहा कंस को और क्या कर रहा था कंस, पथि प्रग्रहीणम कंसम, जब कंस देवकी और वसुदेव को रथ के ऊपर विराजमान करके और सारथी की जगह बैठकर साले का कर्तव्य निभाते हुए अपनी बहन को अपने ससुराल छोड़ने जा रहा था, उस समय क्या हुआ, उस समय आभाष्या, उस समय एक भाषण सुनाई दिया। क्या भाषण सुनाई दिया, कहां से सुनाई दिया, अशरीर वाक, कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया, तो इसको अपनी भाषा में कहते हैं आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी का मतलब जैसे जिसका बिना किसी व्यक्ति के ऐसे ही आकाश से एक शब्द हुआ, और वो शब्द किसने किया था, वो शब्द देवताओं ने किया, वो शब्द देवताओं ने किया था। क्या कहा शब्द ने, अस्यास त्वाम, अस्यास ये जिसको बहन को तुम छोड़ने जा रहे हो ना, ये जो तुम अपनी बहन देवकी को इसको विदाई करने जा रहे हो ना, अस्यास त्वम, ये तुम्हारा कंस, तुम्हारा अष्टमो गर्भ हो, आठवां गर्भ। ये नहीं कहा कि लड़का या लड़की, पुत्र या पुत्री, बस अष्टवां गर्भ। हंता याम, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा हनन करने वाला, तुम्हारा हंता तुम्हारे को मारने वाला है, ये तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। याम वह से, जिसको आप, वह से शब्द से वाहन शब्द निकला है, वाहन का मतलब ढोके जाना या लेके जाना, जिसके तुम सारथी बन के और बड़े बड़े जो है सम्मान के साथ जिनको छोड़ने जा रहे हो ना, इस तुम्हारी बहन को, इसी का ही आठवां गर्भ तेरा काल है कंस मूर्ख। तो अब इस श्लोक का अर्थ है, जब कंस रथ के घोड़ों की लगाम को संभाल के और रथ को मार्ग से वसुदेव और देवकी को विदाई के लिए जा रहा था, उस समय आकाशवाणी ने कंस को संबोधन किया, हे मूर्ख। प्रभुपाद ने एक और शब्द भी अबुद्ध के लिए लिखा है, मूर्ख के साथ लिखा है बदमाश, हे बदमाश मूर्ख कंस, आठवां गर्भ इस नारी का, ये जो आपकी साथ जा रही है बहन, जिसको आप ले जा रहे हो, ये आपके काल का कारण बनेगा। आप श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, आकाशवाणी ने जो भविष्यवाणी की, ओमेन का मतलब जो यहां एक, इसको कहते हैं, हम तो ओमेन कहते हैं जनरली, कोई सुकन देखते हैं कि शुभ है कि अशुभ है, तो यहां ओमेन का मतलब है जो भविष्यवाणी हुई, और आकाशवाणी से जो शब्द कहा गया वो कहा गया अष्टमो गर्भ, इसका मतलब तुम्हारा आठवां गर्भ। और उन्होंने ये नहीं बताया कि वो लड़का है या लड़की है। ये देवता लोगों ने देखा कि क्रूर कंस इतना अगर भक्तों की सेवा करेगा, इस अनंक दुमदुभी देवकी की और वसुदेव की सेवा करेगा, और इस देव रूपेण देवकी की सेवा करेगा, जो भगवान के वात्सल्य प्रेम के परिकर हैं, तो फिर कंस पुण्य प्राप्त करने से ये असुर जो है हमारे काम को देर करा देगा, क्योंकि भगवान को हम तो गए थे प्रार्थना करके करने के लिए कि आकर आप पृथ्वी का भार उतारो, और पृथ्वी का भार ये कंस और कंस के साथी जरासंध आदि, इसका सुसर ये सब है, और ये अगर इतनी सेवा करने लग गया भक्तों की, तो धरती के भार उतारने में भगवान को संकोच करना पड़ेगा, और फिर हमारे काम में बाधा पड़ जाएगी। देवताओं को बड़ी चिंता होने लगी, इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी करके कंस को विचलित किया। और इससे एक और बड़ी सिद्धांत की स्थापना होती है, इसलिए प्रभुपाद ने शब्द बदमाश लिखा है रासकल, कि ये जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये तब तक स्नेह करते हैं जब तक उनके अपने स्वार्थ के ऊपर कोई संकट ना आए। स्वार्थ के ऊपर संकट आया तो उनका असली रूप सामने आ जाता है, जैसे आप अभी देखेंगे कि कंस ये सुनते ही लगाम को छोड़ के तलवार निकाल के और देवकी के बाल पकड़ के मारने को तैयार हो जाएगा। जिस मंगल समय विदाई के समय भाई बन के और प्रेम और स्नेह से विदा करने जा रहा था, वो मारने के लिए तैयार हो जाएगा। ये है बदमाश शब्द प्रभुपाद के लिखने का तात्पर्य, कि ये देखने में जब तक बोलता नहीं है तब तक लग रहा है कि बड़ा स्नेह कर रहा है, लेकिन जब इसके स्वार्थ के ऊपर, इसके भोग के ऊपर और जो है इस जब आएगा, तो उस वक्त ये तत्काल ही भाग जाएगा, उस वक्त इसके अंदर जो असुरी वृत्ति है वो निकल आएगी। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अगर कंस आगे आठवें बालक को देखेगा भी थी कि ये लड़की है, तो इसको संदेह नहीं होगा, क्योंकि आकाशवाणी ने गर्भ का कहा था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आठवें बालक के समय भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया की प्रेरणा से वसुदेव को कहा कि मुझे छोड़ के आओ यशोदा के वहां, और यशोदा के वहां जो मेरी छोटी बहन अनुजा प्रकट हुई है उसको आप यहां लेकर आओ। तो कंस ने तो देखा आठवें गर्भ के रूप में उस योग माया को, तो कंस को संदेह न हो क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था गर्भ, लड़का और लड़की न कह के कंस को ठग दिया था, कंस वॉज चीटेड, कंस को ऐसे ठग दिया था। और फिर विश्वकोश जो डिक्शनरी है उसमें वर्ड गर्भ जो है गर्भ शब्द का अर्थ है, गर्भ शब्द का अर्थ जो है वो गर्भ भी है और अर्भक भी है। अर्भक का मतलब है नवजात बालक। गर्भ का परिभाषा ये होती है, जो अब जब तक मां के पेट में होता है तब तक वो गर्भ है, और जब वो प्रकट हो जाता है तो उसको, छोटे बालक को अर्भक कहते हैं। तो गर्भ और अर्भक, जैसे हमारे सृष्टि काल में दो शब्द हैं, सृष्टि कैसे होती है, एक है महत्त्व एक है प्रधान। तो प्रधान ऐसे है जैसे गर्भ, और महत्त्व ऐसे है जैसे अर्भक है। दोनों ही एक चीज, दो नहीं है, लेकिन जब काम सृष्टि के में नहीं आता है, सारा भौतिक सामग्री भगवान के पेट में पड़ी होती है गर्भोदक्षाय विष्णु में, तो उसको कहते हैं प्रधान। और जब सृष्टि के समय उसको बाहर निकाला जाता है तब उसका नाम होता है क्या ही बताया, प्रधान और महत्त्व, महत्त्व। तो ऐसे गर्भ और अर्भक, ये दो शब्द जो है गर्भ के लिए हमारे कोश में कहे गए हैं। अपनी बहन की प्रति कंस का स्नेह तब तक था, बड़े स्नेह के कारण उसका सारथी बना था, रथ को चला रहा था, उसको अपने बहनोई के साथ उनके घर छोड़ने जा रहा था। तो देवताओं ने देखा, इतना स्नेह अगर कंस ने देवकी से किया तो फिर हमारे काम में रुकावट पड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने ये आकाशवाणी की थी। प्रभुपाद जी यहां कहते हैं ये आकाशवाणी देवताओं ने की थी। भगवान श्री रामचंद्र सीता और लक्ष्मण तो चले गए थे चित्रकूट में, और जब भरत उनको मनाने के लिए जा रहा था तब देवता बड़े विचलित हो गए। देवताओं ने कहे, भरत जैसे भाई के कहने के ऊपर राम जी अगर वापस आ गए और राज तिलक ले लिया तो हमारे काम में रुकावट पड़ जाएगी। तो उनके मन में था कि भरत के रास्ते में कोई बाधा डाले, लेकिन उस वक्त देवताओं को सावधान किया देवऋषि नारद आदि ने कि देखो भरत भक्त है और भक्त से किसी की हानि नहीं होती, आपके काम में रुकावट नहीं पड़ेगी, और अगर भक्त के रास्ते में आपने बाधा डाली तो दुर्वासा ऋषि की बात याद रखना, जो भक्तों कहे वो अम्बरीश महाराज को बाधा डाली थी, और फिर सुदर्शन चक्र जब खदेड़ रहा था तो ब्रह्मा और शंकर भी सहायता न कर पाए, तो आप देवता भक्तों के साथ ऐसा काम मत करना, और संत से किसी का अहित होता ही नहीं है, और भरत बहुत संत है, लेकिन ये बड़ा दुष्ट है, ये कंस बड़ा दुष्ट है, इसलिए देवताओं ने देखा कि हमारे काम में इससे बाधा पड़ेगी अगर ये स्नेह करेगा इन भगवान के भविष्य में होने वाले माता पिता के साथ, तो वो तो फिर हमारे लिए संकट हो जाएगा। तो यहां लिखा है, तो उस आकाशवाणी ने इस कंस को प्रेरित किया, और इसको प्रेरित किया, हां किस लिए प्रेरित किया, कि ये इनका अपराध करे। किसका अपराध करे, देव रूपेणी देवकी का और अनंक दुमदुबी वसुदेव का अपराध करे। ये एक भक्त अपराध करे, वैष्णव अपराध करे, देवताओं ने उसको अपराध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि ये अपराध बड़ा भारी होता है, और वैष्णव अपराध भक्तों का अपराध बहुत बड़ा भारी होता है, बड़े बड़े देवताओं को इन अपराध से संकट हो जाता है। तो इस कंस को, तो कंस के लिए तो देवताओं ने ये काम किया ही सही। तो आगे क्यों भाई ऐसा करना चाहते थे, कंस के प्रति देवताओं का ऐसा भाव क्यों था, कोई शत्रुता थी नहीं, देवता कंस को जानते थे। आगे आप देखें, नारद जी भी कंस के पास आएंगे, और पहला बालक जब वसुदेव देने आएगा तब नारद कंस कहेगा आठवें से मुझे भय है, इससे थोड़ी भय, इसको ले जाओ आठवां लाना। वसुदेव तो कहा कि कैसे कंस क्रूर के मन में इतना दया आ गई है, लेकिन नारद जी ने कहा कंस इतना दयालु हो गया तो हमारे काम में देर हो जाएगी, देवताओं के काम में और देर हो जाएगी। तो नारद जी आके उस वक्त कहने लगे, हे भोजराज कंस, मैं देवलोक से आ रहा हूं, सारे देवता यदुवंश में षड्यंत्र करे तुम्हारे खिलाफ अवतार लेने जा रहे हैं, और ये भगवान विष्णु कितना चतुर है तुम जानते नहीं हो, वो चतुर्भुज बहुत बड़ा चतुर है, वो आठवां और पहला आ जाए तुम्हें क्या पता, आठवां और पहले की गिनती करके दिखाओ, मानो एक पुष्प रखा अष्ट दल, बोला इसका एक कौन सा है, अष्ट दल कमल का एक दल कौन सा है, आठवां कौन सा है बताओ। तो ऐसे नारद जी वसुदेव और देवकी के पुत्र को मरवाने के लिए कंस को प्रेरणा क्यों दे रहे थे? आखिर नारद जैसा ऋषि ऐसा काम क्यों कराएगा? तो उसके लिए यहां बात बताई जा रही है, और यो बात ये बताई जा रही है कि उस आकाशवाणी ने देवकी माता को का अपराध करने के लिए कंस को प्रेरित किया, उसको उत्साहित किया, क्यों? इसलिए कि छह मरीचि के जो पुत्र थे जिनको शाप मिला था कि देवकी के गर्भ से पैदा होंगे और फिर कंस के द्वारा मारे जाएंगे। अब ये जो है ये एक इतिहास है पुराना, ब्रह्मा जी भगवान के गुण अवतार भी हैं, वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं, और एक महान भागवत भी हैं। ब्रह्मा जी ने वाक नाम की अपनी कन्या को जब सर्जन किया अपने ही शक्ति से, और फिर उसकी ओर आकर्षित होके दौड़े, तो उस वक्त मरीचि तो देवता है, उसके छह पुत्र थे वो हंसने लगे, और उसके हंसने के कारण उनको श्राप मिला के तुम असुर योनि में जाओ। ये कथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण विप्र को सुना रहे हैं, जो नवदीप से आके जगन्नाथपुरी में भगवान चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, आप तो साक्षात नंद नंदन हो, मैं जानता हूं, मेरी बहुत श्रद्धा है, लेकिन ये नित्यानंद आप बड़ा सम्मान देते हैं, सन्यासी होके रेशमी कपड़े पहनता है, पान चबाता है, मेरी श्रद्धा उनकी प्रति नहीं हो रही है। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद महाजन और नित्यानंद अवधूत, उसके प्रति ऐसा विचार करना बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा, ये वैष्णव सामान्य वैष्णव की क्रिया मुद्रा का पता नहीं लगता है कि वो क्या सोच रहा है क्या कर रहा है, और अगर अगर नित्यानंद कोई ऐसा काम करे जो 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 घृणित भी हो फिर भी वो हमारे लिए पूजनीय है। और तब कहा कि ऐसे महापुरुषों का अपराध करने से बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, जैसे ब्रह्मा का अपराध करने से मरीचि के पुत्रों को हिरणाकश के वहां असुर योनि में प्रकट होना पड़ा, और ये हिरणाकश के यहां जब प्रकट हुए तो तपस्या कर रहे थे, तो हिरणाकश ने कहा, किसकी तपस्या कर रहे हो? अरे मैं ही तो यहां का स्वामी हूं, मैं ही तो भगवान हूं, तुम किसी और की तपस्या क्यों कर रहे हो? तो कहा, तुम्हें श्राप देता हूं, तुम भले तपस्या करो, तुम अपने पिता के हाथों मारे जाओगे। तो यही फिर वापस देवकी के गर्भ से पैदा होंगे, और कंस इनका अपना पिता है, कालनेमी, ये कालनेमी के पुत्र थे, तो कालनेमी कंस के हाथों इन छह की मृत्यु होनी है, और नारद जी ये जानते थे, इसलिए नारद जी उनको उनके हाथों जो कार्य करना था उसकी प्रेरणा देने के लिए आए थे। तो न देवता गलत बोल रहे थे और न नारद जी गलत बोल रहा था, कंस का जो असली कालनेमी का रूप और उसके द्वारा ये छह अपने पुत्र मारे जाने थे जो देवकी के यहां प्रकट होने हैं, उसके लिए यहां कहा गया है कि ये छह बच्चे मरीचि के थे और ये देवकी के पुत्र के रूप में उनको आना था, उनको ऐसा श्राप था क्योंकि कालनेमी के हाथों मरना था, और देवकी ने जब देखा कि कंस मुझे मारना चाहता है, और जब देवकी ने ये समझा कि कंस मेरे द्वारा उत्पन्न होने वाले परम पुरुष भगवान के द्वारा मारा जाएगा, तो उनको बड़ा आनंद हुआ। देखो आज ये देखो भक्त की महिमा। कंस क्रोधित होकर देवकी को मार रहा है और देवकी आनंदित हो रही है कि मेरे सौभाग्य में भगवान के वात्सल्य भाजन माता बनने का शुभ अवसर आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि देवकी इतनी प्रशांत थी, न रोई न चिल्लाई, न कहा कि भाई मुझे मारो मत, और न कहा पति को कि मेरी रक्षा करो। वो तो इसी आनंद में इतनी विभोर थी कि मेरी तपस्या सफल हो रही है 3 जन्मों की, मेरे घर में भगवान पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इसलिए देवकी को प्रशांत कहा गया है, प्रकृष्टेण रूपेण शांत थी, किसी भय से भयभीत नहीं थी, निर्भय खड़ी थी। ऐसे ही भक्त जो कैसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं और भगवान के स्मरण में सदा ही तलीन होते हैं, उनके यहाँ भगवान का प्रकट्य होता है, भगवान उनका रक्षक है, उनको कभी संकट नहीं आता है। और ये देवकी माता ही इन 6 बच्चों के उद्धार का कारण बनेगी। यहाँ लिखा है उद्धार होगा, ये द्वारका लीला में आप फिर सुनेंगे। एक दिन कृष्ण बलराम अपनी माता को प्रणाम करने के लिए गए तो माता ने कहा, बेटा मैंने सुना आपने अपने गुरु सांदीपनि मुनि का बहुत समय पहले मरा हुआ बच्चा, वो तो संयमपुरी से वापस लाके दिया था, यमपुरी से, मेरे 6 बेटों को कंस ने मेरे सामने मार दिया, मैं उनको दूध तक नहीं पिला सकी, मैं उनको देखना चाहती हूँ। दोनों भाई सूतल लोक में बलि महाराज के पास गए। बलि महाराज ने बड़ा स्वागत किया, क्या सेवा करूँ, बोला ये 6 भाई हमारे हमारी माता देखना चाहती है। वहाँ से उन 6 बच्चों को लाए और जब वो 6 बच्चे आए, देवकी माता ने के हृदय में स्नेह उमड़ाया, उसने अपना स्तनपान कराया। भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद का दूध पीने से इन 6 को वापस मरीचि के पुत्र में देवताओं का पद, उपदेवताओं का पद प्राप्त हुआ। तो देवकी माता इनके उद्धार का कारण बनी और इसलिए लिखा है कि देवकी के द्वारा इसका उद्धार होगा। अब आगे लिखा है वह से, जो शब्द वह से है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था, कंस तुम एक पशु की तरह जो बोझ ढो रहे हो तुम्हारे शत्रु की माता का, ये मुझे वाहन का मतलब है, भार उठाने वाला, जो लोडिंग गाड़ी होती है उसको वाहन कहते हैं, और जो गधा गाड़ी है उसको भी वाहन कहते हैं। तो तुम गधे की तरह उसी को ढो के जा रहे हो जिसका बालक तेरा काल। तो ये जो वाहन शब्द है इसके कारण इसको अबुद्ध कहा गया है, कि तुम अपने मारने वाले को पैदा करने वाली का भार उठा के ढो के जा रहे हो मूर्ख। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य पूरा होता है। और अब आपके कोई प्रश्न और जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद अब कंस क्या करने जा रहा है, देवकी शांत रहेगी तो वसुदेव जी किस प्रकार से कंस को शाम दाम दंड भेद चारों जो राजनीति के नियम है उनसे कंस को समझाने का प्रयास भी करेगा। अंत में कहेगा कैसे भी बालक को बचाना ही चाहिए, और कैसे भी इस वक्त मेरे को देवकी के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, तब वचन देगा। और वचन बड़ा अद्भुत है, उस वचन में कहेगा कि आपको देवकी से डर नहीं है, आपको इसकी संतानों से डर है, तो आपको मैं वो सब दे दूंगा जिससे आपको भय नहीं है। वह शब्द संस्कृत में ऐसे लिखा है कि जिससे आपको भय है, लेकिन उसके आगे ए ऐसे आ जाता है पता नहीं लगता है। संस्कृत के बड़े विद्वान कहते हैं उसने कहा तुम्हें वो सब बच्चे दे दूंगा जिससे तुमको भय है लेकिन जिससे तुमको भय नहीं है, जिन जिन जिससे तुमको भय है वो नहीं दूंगा, ये इसका अर्थ निकलेगा। इसलिए अपना वचन कैसे वसुदेव तोड़ देता है, क्यों नहीं दिया आठवां गर्भ? तो एक तो कारण यह उसने कहा था जिससे भय वो दूंगा ही नहीं, और दूसरा दूसरा वसुदेव ने कहा यहां भगवान सामने चतुर्भुज मुझे कह रहा है कि मुझे छोड़ के आओ नंद के पास, नंद यशोदा के पास गांव में, यशोदा की गोद में छोड़ के आओ मुझे, और दूसरी तरफ मेरा अपना वचन है कंस के साथ, तो मैं भगवान के वचन को मानू कि अपने वचन का बहुत ज्यादा महत्व है? भगवान के वचन को मानू, अपने वचन को कुर्बान कर देता हूं, बलिदान कर देता हूं। वैसे भी जब कोई घर में बहुत भाग्यशाली बालक का जन्म हो तो सबसे बड़ी चीज पिताजी को दान करनी चाहिए और उसको बलिदान करना चाहिए, बच्चे के ऊपर से घोल के, बच्चे के ऊपर से वो सरकम एम्बुलेट करके उसको फेंक देना चाहिए। तो मेरा वचन ही मेरा सबसे प्रिय है। आज मैं वचन को जमुना में डाल देता हूं और कन्हैया को जमुना के पार ले जाता हूं। और ऐसा वसुदेव ने क्यों किया, ये बहुत बड़ा, इसलिए उस श्लोक का अर्थ हमने हमारे आचार्यों ने कहा है कि वो सब बच्चे इसके आपको दूंगा जिससे भय नहीं है, और सॉरी जिससे भय नहीं है, इसका मतलब जिससे भय है वो नहीं दूंगा, वो कृष्ण आएगा वो आपको नहीं दूंगा। अगर वसुदेव इस तरीके से भगवान को क्रूर कंस के हाथों में दे के आए तो फिर भगवान क्यों वहां प्रकट होंगे? पहले भगवान की रक्षा भक्त करता है तो फिर भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। पहले गाय की पूंछ से और गाय की गोबर से कृष्ण की रक्षा की गई जब पूतना कृष्ण को उठा के ले गई तो गोपियों ने, और फिर भगवान ने गायों की रक्षा की, गोपाल बन गए। तो ऐसा भी है कि हम भक्त जब भगवान की सेवा में लगते हैं और उससे भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान हमारी रक्षा, और शुद्ध भक्तों की सेवा के लिए भी भगवान आतुर होते हैं, जैसे अर्जुन की सेवा के लिए सारथी बनने को तैयार हो गए। तो भक्त भगवान की जब सेवा करता है और वो सेवा जो है निस्वार्थ और अनन्य भक्ति के प्रेम के भाव से होती है, तो भक्त भी ऐसा अवसर ढूंढते रहते हैं, मौका ढूंढते रहते हैं कि इस भक्त का कब मैं आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इसकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। तो यहाँ देवकी और वसुदेव के यहाँ भगवान को प्रकट होना था। आगे भगवान अपने मुख से कहेंगे कि तीन बार मैं आप अपने वचन को सत्य करने के लिए आपके घर में बालक के रूप में प्रकट हुआ हूं। तो यह वाणी को विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। यस दंडवत प्रणाम भाई, बोलिए।
प्रभु जी, आपने बीच में वैष्णव अपराध की बात करी, तो जाने अनजाने में हमने जीवन में बहुत सारे वैष्णव अपराध करे होंगे जिसकी वजह से हम भक्ति में भी आगे नहीं हो रहे और प्रॉब्लम भी चल रहे, तो उसको कैसे कैसे बचेंगे, उसका समाधान क्या है?
वैष्णव अपराध इतना सूक्ष्म है कि भक्ति में बहुत लंबा समय हमारे साथ चलता है, अनर्थ निवृत्ति में भी ये इससे निवृत्ति नहीं होती है। साधन भक्ति के स्तर के ऊपर क्लेश तो नाश होते हैं लेकिन अपराध होते रहते हैं। इसलिए एक तो हमको अपराध से बचने के लिए सावधान होना चाहिए, अमानी न मान देना इसको हमेशा याद रखना चाहिए कि अपने मान की इच्छा न करें और सबको सम्मान दें। अपने मान की इच्छा, क्योंकि प्रायः हमसे अपराध होते हैं जब हम दूसरों से सम्मान नहीं पाते हैं तब उनका अपमान करते हैं। प्रायः कोई भक्त है जिससे हमारी आशा है कि ऐसे करेगा, नहीं करता है, तब हमको उसका अपराध करते हैं। तो हम अपमानी न मान देने को अच्छी तरह से हृदय में उतार लें कि हमें कोई किसी से सम्मान की आशा नहीं है लेकिन हम सबका सम्मान करेंगे, तो वैष्णव अपराध से तृणादपि। यही एक श्लोक बहुत मुख्य श्लोक है जिसको प्रभुपाद जी कहते थे वैष्णव को कंठ हार करके पहनना चाहिए, निम्रता हो, सहनशीलता हो, सबको मान देने का हमेशा मान देने को तैयार हो लेकिन अपने मान की अभिलाषा न हो। ये श्लोक को रोज पाठ करना चाहिए और इसके अनुरूप अपने जीवन को ढालना चाहिए तो वैष्णव अपराध से जाने अनजाने में बच सकते हैं। और अगर हमको पता लग जाता है कि हमारे द्वारा किसी वैष्णव का अपराध हुआ है तो फिर उसके पास जाके क्षमा याचना मांगनी चाहिए। अगर पता नहीं लगता है तो भी भगवान को रोज हम वांचा कल्पत्रु जब कहते हैं तो एक प्रकार से हम सब वैष्णव को प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगते ही है, इसलिए इस मंत्र का भी रोज पाठ करना चाहिए। और जिन्होंने हमारी सहायता की है भक्ति, उनका नाम लेके प्रणाम करना चाहिए इस मंत्र के बाद, कम से कम 2-4-5 का, जिनसे हम प्रेरित हुए हैं। हमारे अपने जीवन में हम रोज वांचा कल्पत्रु कहते हैं, तो जो भी 5-5-25 भक्त हैं जिनके कृपा से हम भक्ति में टिके हुए हैं, उन सबको प्रणाम नाम लेके करते हैं। और किसी के प्रति हमारे द्वारा अपराध हो गया है तो उसका भी नाम लेके क्षमा याचना मांगनी चाहिए कि प्रभु, जाने अनजाने में आपकी प्रति हो सकता है मेरे मन में कोई कुविचार आया हो, मुझे क्षमा कर देना। ये बात जब भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में सुनेंगे तो उस भक्त के हृदय में भी परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हैं, उसको कहेंगे अरे भाई तुम्हारा उसने अपराध नहीं किया है, ये तुम्हारे को गलत विचार आ गया है, तुम ठीक नहीं समझ रहे हो, इसलिए इस बात को भूल जाओ। तो ऐसे भगवान हमारी अपराध से मुक्ति करने का, अपराध से बचाने की सहायता करेंगे अगर हम रोज प्रतिदिन ये जो नेम से वांछा कल्पत्र सिंधु वचन पतितान हम पावने भ्यो वैष्णवे भ्यो, ये अगर प्रार्थना करते रहेंगे और भगवान को रोज वैष्णव अपराध से हम नत्रनाद अपी वाले श्लोक का भी रोज अगर हम एक प्रकार से अपने अपने जो है पाठ के अंतर्गत हृदय में इसका ध्यान बना के रखेंगे तो बचने की बहुत ज्यादा संभावना है। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा जी।
हरे कृष्णा। हाँ जी परमेश्वर गौरदास।
अरे परमेश्वर गौर जी बोलिए।
आपका आशीर्वाद से सप्तम स्कंद अभी चल रहा है रमजान समय पे।
और सातवां स्कंद चल रहा है, ये इसमें विशेष रूप से है जिसको कहते हैं ऊती 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 का विशेष, इसके अंदर ऊती का वर्णन है। ऊती ऊती अर्थ कर्म वासना।
अच्छा।
पांच अध्यायों में देवताई कर्म वासना, 5 अध्यायों में असुरी कर्म वासना, 5 अध्यायों में मानवी कर्म वासना, 5 अध्यायों में असुरी कर्म वासना से हिरणाकश्यपु का वर्णन है, 5 अध्यायों में देवी कर्म वासना से ऊती से प्रहलाद महाराज का वर्णन है, 5 अध्यायों में वर्ण आश्रम का वर्णन है, मानवी सामान्य वासना जिससे हमारे शरीर बनते हैं कर्म वासना जिसको कहते हैं ऊती, तो एक ऊती का इस स्कंद में ऊती का वर्णन समझा जाता है। और ये एक ऐसा स्कंद है जिसको त्रिवेणी स्कंद हम कहते हैं, त्रिवेणी संगम है। कौन सा त्रिवेणी संगम है? एक महाजन नारद जी बोल रहे हैं, दूसरा महाजन युधिष्ठिर महाराज सुन रहे हैं धर्मराज, और तीसरे महाजन प्रहलाद की कथा हो रही है। 3 महाजनों की ये त्रिवेणी है और ये कथा हो रही है हस्तनापुर के महल के अंदर, ये कथा महल के अंदर हो रही है। और इसका एक शब्द में सारे स्कंद का सार ये है कि प्रश्न ये पूछा गया कि भगवान पक्षपात करते हैं, यहां से ये स्कंद शुरू होता है कि देवताओं का पक्ष लेते हैं असुरों का वध कर देते हैं, तो इसका खंडन करने के लिए पूरा स्कंद कह रहा है नहीं, प्रहलाद हिरणाकशिपु जैसे बड़े असुर का बेटा था, उसके लिए भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लेकर आ गए, तो आप कैसे कह सकते हो कि भगवान पक्षपात करते हैं? आप नहीं कह सकते हो कि भगवान पक्षपात करते हैं, क्योंकि प्रहलाद तो बड़े असुर हिरणाकशिपु का पुत्र था, उसके लिए भगवान ने साक्षात अवतार कर लिया, उसकी रक्षा कर ली, तो आप कैसे कह सकते हो कि भगवान असुरों का जो है वध करते हैं और देवताओं का नहीं? भगवान उसी का पक्षपात करते हैं जो उसकी प्रेम से भक्ति करता है, जब उसका तो हमारे अपने यथा माम प्रपद्यंत के अनुसार भवा, भगवान हमारे साथ व्यवहार करते हैं, असुर देवता का उनसे कोई मतलब नहीं।
हरे कृष्णा प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बहुत चाहिए।
हे दंडवत दंडवत नहीं, बहुत अच्छा, सातवां स्कंद का आनंद लीजिए, सुंदर स्कंद है।
अच्छा, आपका क्लास में एक हमको सवाल है।
हाँ जी।
वसुदेव का और एक नाम है आनंद धुंद भी।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
मतलब है क्या प्रभु?
उसका मतलब है कि वसुदेव के जन्म के समय आकाश में देवताओं के और दुमदुबियां और केटल ड्रम और वो अपने आप बज गए थे, उनको बजाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो जोर जोर से बजने लगे
अच्छा,
कि ऐसा व्यक्ति धरती के ऊपर पैदा हुआ है जिसके लिए जिसके यहाँ भगवान का प्रकट्य होगा और धरती के भार उतरेगा।
अच्छा,
अनंक दुमदुमी का मतलब, अनंक दुमदुमी का मतलब है ढोल और नगारे बजना, और ये देवताओं के ढोल
अच्छा।
और नगारे बिना पीटे अपने आप बज गए। पहले तो कोई बजाता है तब
अच्छा,
बजते, अपने आप बज गए थे, इसलिए उसका नाम अनंक दुमदुबी हो गया।
ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
हरे कृष्णा,
बहुत अच्छा।
नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक दिन मैं आपका प्रवचन सुन रहा था, बहुत अच्छा।
प्लीज एक्सेप्ट माय हंबल ऑब्लिगेशन।
दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम वैष्णव को।
हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।
कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न है क्या? दंडवत प्रणाम कौन कर रहा है भाई? हाँ, कौन? कौन बोला? नित्यानंद
मरीचि के पांच पुत्र को श्राप मिला।
क्या पूछ रहे हैं परीक्षित के? कोई लोग पूछ के, आप पूछ के बता दे क्या पूछ रहे हैं। जिसका जिसका ऑडियो नहीं ठीक नहीं, आप पूछ के बता दो क्या पूछ रहे हैं प्रभु जी नित्यानंद।
प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। इसमें प्रभुपाद ने परपट में लिखा है कि मरीची का छह बेटे का उद्धार जैसे ही कंस का हाथ से वध हुआ उसमें हो गया करके परपट में प्रभुपाद बताते हैं।
हाँ जी,
आप अभी बता रहे थे कि देवकी का स्तन से उनका उद्धार हुआ करके, तो ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए।
मेरे ख्याल में क्लास में मैंने ये किया सारा स्पष्ट, आप शायद आगे पीछे आए होंगे। मरीचि के पुत्र ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे, असुर बन के हिरण्याकश के यहाँ पैदा हुए, और हिरण्याकश के शराब से कि तुम अपने बाप के हाथों मारे जाओगे, कालीनेमी के पुत्र हुए, तो कालीनेमी अभी कंस बना है, और देवकी के यहाँ ये प्रकट हुए हैं। फिर ये आगे देवकी भगवान श्री कृष्ण बलराम से इनको सूतर लोक से मंगा कर द्वारका लीला में वापस इनको मरीचि के पुत्र के रूप में उधार करके भेजेगी। ये कथा हमारे आचार्यों ने इस कथा को लिखा है, और ये कथा चैतन्य महाप्रभु ने एक ब्राह्मण को बताई है। आज मैंने प्रवचन में ये बात कही है, और हमारे आचार्यों ने इसके ऊपर और भी टीका लिखी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और भक्ति विनोद ठाकुर आदि ने, कि मरीचि मन का प्रतीक होता है, और ये छह पहले बचे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के प्रतीक हैं, और देवकी भक्ति रूपा है, और कंस भय है। जब वो भौतिक जगत के भय से भक्त के हृदय से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का नाश होता है, तब भगवान का प्रकट्य होता है। ऐसा हमारे आचार्यों ने इसका एलोगोरिकल अर्थ बताया है।
जय
हरे कृष्ण।
थैंक यू प्रभु।
हरि बोल।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
दंडवत
प्रभु जी, भगवान कृष्ण ने तीन बार कृष्णी और सुताप और अदिति और कश्यप और वासुदेव और देवकी के ऊपर जन्म लिया है।
हाँ जी,
ये तीनों जन्म में वो माता पिता तो सेम थे या अलग अलग थे?
नाम है तो माता पिता तो एक ही है, लेकिन वो उनका जन्म दूसरा हुआ तब तो तीन जन्म हुए, तीन बार प्रकट हुए। यही तो भगवान कह रहे हैं कि पहले आप प्रश्नी और थे तब मैं प्रश्नी गर्भा हुआ, फिर आदित्य और कश्यप थे तब मैं आपके घर में वामन देव होके आया, अब आप देवकी और वसुदेव हो तो मैं आपके घर में वसुदेव कृष्ण होके आया हूँ। इसका मतलब पर्सन एक ही था लेकिन तीन जन्मों का वर्णन है, और इसलिए इस जन्म में वसुदेव जी जो है पिता होने के बाद भी द्वारका में नारद को कहते हैं कि हमने इतनी तपस्या की, लेकिन फिर भी भगवान पुत्र के रूप में आए, फिर भी हमको आप बताइए कि अब हम भगवान की सेवा में नित्य कैसे जाएं। तब वो भागवत धर्म का उपदेश वह निमि महाराज और नव योगेंद्र का उपदेश वसुदेव को सुनाया जा रहा है। तीन जन्म क्यों हुए? क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान को पुत्र माना और भगवान ने कहा मेरे जैसा कोई होता ही नहीं है, तो मैं अपने वचन को सत्य करने के लिए तीन बार आपके घर में प्रकट हुआ, आप जैसा पुत्र चाहिए। अरे मेरे जैसा कोई और है ही नहीं, तो मुझे ही आना पड़ेगा, तो मैं कैसे आ सकता हूं। तीन बार आके मैं अपने वचन को पूरा किया, ऐसा ऐसा माना जाता है।
थैंक यू ब्रह्म, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
प्रभु एक कथा है मैंने सुना है, उसका अभी प्रामाणिकता आपसे जानना चाहता हूँ। जो बावन अवतार था, तो भगवान जब वो बालक के पास आते हैं तो उनकी जो सिस्टर थी उनके मन में वो बालक का स्वरूप देख के बहुत
नहीं मैं समझ गया आपकी कथा, रतनमाला उसका नाम था। ये गर्ग संहिता में है, गर्ग संहिता में प्रायः जितने असुर भगवान ने मारे हैं उनके पूर्व जन्म की कथा है। तो ये रतनमाला बलि महाराज की बहन जो है, उसने वामन देव को देखा, पहले तो लगा ऐसा मेरा बेटा हो तो दूध पिलाऊं, गोद में बिठाऊं, लेकिन वामन देव को जब रस्सियों से बांध दिया वरुण फास से, तो कहा इसको तो विष देना चाहिए। तो भगवान ने उसकी दोनों इच्छा पूरी करने के लिए वो पूतना के रूप में आई। यही पूछना चाहते हैं ना? हाँ, ये गर्ग संहिता में है।
हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।
दंडवत प्रणाम प्रभु।
प्रभु दशरथ और कौशल्या वो भी एक चौथा नहीं था कि ये कैसे? उसको दशरथ और कौशल्या का भी जिक्र आता है कि वो भी कश्यप और अदिति थे।
कश्यप और अदिति तो अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि वो चले गए। कश्यप और अदिति तो आज भी हैं, अदिति के और भी 12 पुत्र हैं। लेकिन जब कहते हैं आदित्य नाम अहम विष्णु, तो वहां तो वामन देव का नाम लिया जाता है, राम जी का नाम लिया नहीं जाता है। हो सकता है किसी और कल्प में कश्यप और आदित्य के वहां रामचंद्र का प्रकट्य हुआ हो, उनके पूर्व जन्म की कथा ऐसे संभवतः वाल्मीकि रामायण में, तो मेरे ख्याल में ऐसा वर्णन हमने नहीं पढ़ा है, तुलसीदास के यहाँ संभवतः ऐसा लिखा है।
तुलसी रामायण में दो लिखा है कि पहले लिखा है कि मनु और सुतपा ने जब प्रेयर किया तो उनको वरदान दिया, और फिर एक जगह आगे लिखा हुआ है कि कश्यप और अदिति ने भी प्रेयर की थी, तो मतलब दोनों का जिक्र किया है तुलसी रामायण।
तो एक दृष्टि से कल्प के भेद से, क्योंकि भगवान एक बार तो आते नहीं है, बार बार आते हैं, तो एक एक कल्प में आते रहते हैं, तो किसी कल्प में उनके पुत्र, किसी कल्प में उनके पुत्र, वैसे ये क्या है, नित्य भगवान के माता पिता के रूप इनको प्राप्त हो ही गया है ना। आज भी ये भगवान के माता पिता हैं, कहीं ना कहीं भगवान के जहाँ भी जहाँ अवतार होता है वहाँ भी किसी लोक में, अथवा भगवान के द्वारका धाम में और मथुरा धाम में देवकी और वसुदेव ही भगवान के माता पिता के रूप में, और गोलोक वृंदावन में ये नंद और यशोदा हैं। तो इनको तो नित्य जो है वो पद प्राप्त है, लेकिन जब वो लीला काल में आते हैं तो फिर आदित्य और काशी भी बन के आते हैं, तो ऐसे किसी काल में ऐसे संभव हुआ हो, इसको कहते हैं कल्प भेद से ऐसी लीलाओं का। जब कोई लीला दो जगह की कही जाए तो उसको कल्प भेद से समझना चाहिए।
ठीक है प्रभु, धन्यवाद।
धन्यवाद प्रभु।
जो ऐसे ही माता पिता का जो चयन भगवान करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के जब रूप में आए थे तो जगन्नाथ मिश्र और शची देवी का, इनका भी कोई पूर्व जन्म का कुछ है प्रभु जी, थोड़ा स्पष्ट करने?
वैसे तो कहते हैं नंद नंदन जो है वही चैतन्य महाप्रभु बन के आए हैं, तो नंद नंदन की माता पिता तो यशोदा और नंद ही हैं, तो ये नंद और यशोदा होना चाहिए, और कोई नहीं हो सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, अगर साक्षात श्री कृष्ण है, तो ये नंद और यशोदा ही इस रूप में जो है सची और जगन्नाथ मिश्रा के रूप में आए हैं, ऐसा समझना चाहिए। जब उसको कहते हैं कि वो साक्षात नंद नंदन है, तो फिर तो ऐसे मानना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण
भगवान। हाँ मेरे ख्याल, हाँ हाँ जी बोलिए बोलिए। नहीं, मेरे को ऐसे आया कि बात एक ऐसे ध्यान में आई कि माता सची ने कहा था, बेटा जब तुम अवतार लेते हो तो हम तुम्हारे माता पिता होते हैं, और जब तुम श्री विग्रह में प्रकट होके कल्याण करते हो तो वो विग्रह जिस चीज का बना होता है हम तुम्हारी माता पिता बन जाते हैं, और जिस जीभा से तुम्हारे नाम का उच्चारण होता है हरे कृष्णा, वो जीभा में माता बन जाती हूं। तो इसलिए कहते हैं जीभा यशोमती, हमारी जीभ जब हरे कृष्ण जपती है तो यशोमती है, और कृष्ण बलराम उसके ऊपर नृत्य करते हैं। तो ये चेतना महाप्रभु ने अपनी माता सची को कहा था कि जब मैं अवतार लेता हूं तो आपको माता पिता बनाता हूं, और जब विग्रह में प्रवेश करता हूं तो उस चाहे अष्ट धातु हो चाहे मार्बल हो वो मेरी माता बन जाती है, और जब कोई भक्त नाम जपता है तो उसकी जीभा मेरी माता बन जाती है और मैं उसके ऊपर नृत्य करता हूँ। तो भगवान की माता हमारे को भी जीभा के रूप में मिली है, अगर हम उसका सदुपयोग करें तो हमको भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है हरे कृष्ण। और भगवान के विग्रह का दर्शन भी भगवान की माता पिता उस के रूप में वो उनको प्रकट करते हैं। हाँ जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
मेरा क्या प्रश्न था कि जैसे कल्प होता है, आपने बताया अपने कल्प,
कल्प का मतलब है, कल्प का मतलब है ब्रह्मा जी का एक दिन, जैसे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में 28वीं चतुर्युगी के सॉरी सातवें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी में नित्य नेम से आते हैं नंदनंदन कृष्ण यशोदा नंदन कृष्ण, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं, उसमें सातवें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी के द्वापुर के अंतिम चरण में नित्य नेम से आते हैं। ऐसे रामचंद्र भी कल्प में आते रहते हैं, और जिस कल्प में साक्षात भगवान स्वयं श्री कृष्ण आते हैं उस द्वापुर के बाद जो कलयुग का पहला चरण है उसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु कभी कभी प्रकट होते हैं, और हम भाग्यशाली हैं कि इस बार उसी सातवें मनवंतर के 28वीं चतुर्युगी के कलयुग के प्रथम चरण में भगवान श्री गौरंग महाप्रभु प्रकट हो गए और संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से हमको कृष्ण प्रेम सरलता से प्राप्त करने का शुभ अवसर दिया है। तो ये कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन को।
यस प्रभु, हरे कृष्ण, यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। मैं बस मुझे इससे आगे पूछना था कि हर एक कल्प में जैसे भगवान चार युग होते हैं तो चार युग के बाद दूसरे चार युग आते हैं, तो उसमें क्या सेम लीलाएं होती रहती हैं, जैसे भगवान राम आते हैं फिर
थोड़ा सा स्थान का थोड़ा सा जगह का अंतर हो सकता है, थोड़ा सा लीला का भी अंतर होता हो सकता है। जैसे महाभारत में जो कृष्ण की लीलाएं हैं और भागवत में लीलाएं हैं उनमें अंतर है, क्योंकि कल्प का भेद है। कल्प के भेद के कारण महाभारत में कुछ लीलाएं और भागवत की लीलाओं में अंतर है। वो कृष्ण की ही लीलाएं हैं लेकिन दोनों में अंतर है, और उसके लिए कहते हैं कल्प भेद के लिए कारण कुछ लीलाओं में और कुछ स्थानों का अंतर होता है। ये संभव है, होता है। हरे कृष्ण। विशेष रूप से हमारे आचार्यों ने लिखा है जहां राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक जगह पे उनको कहा है वसुदेव प्रद्युम्ना अनिरुद्धा और संकृष्ण है, एक जगह के कहा गया है कि राम जी वसुदेव हैं और लक्ष्मण संकृष्ण हैं और भरत और शत्रुघ्न जो है वो शंख और चक्र हैं। तो वो दोनों दो जगह पे दो ऐसे कहा गया है, वहां बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं इसका कारण है कल्प भेद से ऐसे होता है। हरे कृष्ण। तुलसी गोविंद जी,
हरे कृष्णा प्रभु, वेरी नाइस प्रवचन, वेरी नाइस आंसर्स, वी स्टिल हैव अ फ्यू मिनट्स।
धन्यवाद। मैं दूसरा श्लोक शुरू कर दिया सारी। हाँ
अच्छा, नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा प्रवचन था, आपने फटाफट कवर कर लिया। एनी कमेंट्स शिवल प्रभु, जगियन प्रभु, परमेश्वर प्रभु, बिफोर आई क्लोज?
No comments on the topic. Thank you very much, Sarabhom Prabhu, for being here with us today on the auspicious occasion of Ekadasi.
Oh, Ekadasi puja. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhu.
Today is also the appearance day of His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj.
जय भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की जय। यू हैव एडवांस कैलेंडर वहाँ नरसिंह चतुर्दशी इज आल्सो कमिंग डे आफ्टर टुमारो नरसिंह चतुर्दशी की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
एक प्रश्न पूछना था। जैसे चतुर्दशी हम परसों मना रहे हैं ना, नरसिंह चतुर्दशी, और आज हम एकादशी मना रहे हैं, तो रुक्मिणी द्वादशी, रुक्मिणी जी का जन्मदिन है राइट, आविर्भाव दिवस, तो वो हम आज मनाएंगे कि कल मनाएंगे रुक्मिणी द्वादशी?
रुक्मिणी द्वादशी कौन, ये तो आपका मेरे ख्याल लोकल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। कल रुक्मणी द्वादशी होगी, कल रुक्मणी द्वादशी और परसों फिर चतुर्दशी हो, ये दो तिथि कहीं साथ हो रही है क्या? ये तो भाई कोई ज्योतिषी, हाँ तो ज्योतिषी से पूछना पड़ेगा। अगर एकादशी में आज द्वादशी तो अपने आप हो ही जाएगी, और रुक्मणी जी की कुछ महिमा गानी चाहिए कि रुक्मणी का प्रकट्य कैसा हुआ, रुक्मणी का वो रुक्मणी मंगलम के 6 श्लोक बहुत अच्छे हैं जो रुक्मणी ने चिट्ठी लिखी थी, पहला प्रेम पत्र जो भगवान को लिखा है, वो 6 श्लोक बहुत अच्छे हैं, कभी पढ़ने चाहे आज के उनके महिमा में पढ़ने हैं तो पढ़ें। वैसे भी एकादशी है भगवान का ज्यादा भजन करने के लिए और सेवा करने के लिए, तो अच्छा है कुछ रुक्मणी का चरित्र पढ़ लेना चाहिए कि भगवान का और रुक्मणी का विवाह, 3 विवाह रुक्मणी और भगवान के हुए, पहला विवाह को कहते हैं गंधर्व विवाह जो प्रेम पत्र से हुआ, दूसरे विवाह को कहते हैं राक्षस विवाह जिससे अपहरण हुआ, और तीसरे विवाह को वैदिक विवाह कहते हैं जो बड़े धामधूम के साथ और सबको बुला के और बहुत बड़ा विवाह जो है वो द्वारका के अंतर्गत हुआ। ऐसे रुक्मणी का प्रकट्य कैसे हुआ ये तो बहुत बड़ी अद्भुत एक और लीला है।
Prabhu, according to our calendar, there is no Rukmini Dwadashi at all. I don't know where she got it.
I don't know.
Check it out. Anyway, aaj ka tithi hai Dwadashi tithi, par aaj Ekadashi. We are following Ekadashi today. Haan. For a song, it is
Dwadashi. Rukmini Dwarkadashi hai hi nahi abhi, haan? There is no mention of Rukmini Dwadashi.
I don't think Dwadashi. It's not on my calendar. I'll have to check it out. But it's not Rukmini Dwadashi.
वो जयानंद प्रभु है। ओ नहीं नहीं, लिखा लिखा पड़ा है, लिखा है, इट इज देयर टुडे, इट इज टुडे, इट इज या इट इज ऑन 5th मई, इट सेज जयानंद टुमारो 5th मई, जयानंद प्रभु लिविंग एंड रुक्मणी द्वादशी।
तो प्रभु जी, जैसे दामोदर देश में हम आज द्वादशी कर रहे हैं सूटेबल फॉर एकादशी फास्टिंग, तो हम आज मनाएंगे राइट रुक्मिणी द्वादशी भी?
वैसे लिखा वैसे नहीं,
पूरा इंडिया में आज ही
एकादशी आज है, द्वादशी कल है, रुक्मणी रुक्मणी कल होना चाहिए, कल दोनों कल है, कल दोनों कल कल दोनों कल है।
प्रभु जी आपने वो क्या बताया, रुक्मिणी मंगलम, क्या बताया आपने?
रुक्मिणी मंगलम का मतलब रुक्मिणी के विवाह के लिए रुक्मिणी के 6 श्लोक है, मेरे ख्याल 6 या 7 श्लोक है, वो एक पत्र लिखा है रुक्मिणी ने, प्राय उसको लड़कियां पढ़ती हैं विवाह से पहले, और मतलब एक मंगल का कार्य के हैं ये, 10वें स्कंद के द्वारका लीला में शुरू में रुक्मणी का जो है भगवान कैसे आते हैं लेने, वो रुक्मणी की चिट्ठी है, उस चिट्ठी के 6 श्लोक पढ़ लें, वो भी अच्छे।
थैंक यू सो मच प्रभु।
हरे कृष्णा अच्छा हरे
कृष्णा
श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
yes,
श्रील प्रभुपाद की जय। निदाय गौर प्रेमानंदे हरि 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 गौर
हरे कृष्ण हरे कृष्ण।